शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तो पीछे बोलिए, उत्तिष्ठ उठिए, उत्तिष्ठ उठिए, राजर्षे हे राजर्षि, इमाम यह पृथ्वी, उदधि समुद्र से, मेघलाम घिरी हुई है, दस्युभ्य चोरों से, क्षत्रबंधुभ्य दृष्ट राजाओं के द्वारा, विभ्यतिम अत्यधिक डरी हुई है, पातुम रक्षा करना चाहिए, अरहसी तुम्हें करना चाहिए। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, हे राजर्षि उठिए, उठिए, देखिए जल से घिरी हुई यह पृथ्वी चोरों एवं तथाकथित राजाओं से भरी हुई है। यह संसार अत्यधिक भयभीत है। आपका कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें। तात्पर्य, जब कभी भगवान या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा से किसी आचार्य का आगमन होता है तो वह धर्म स्थापित करता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, धर्म का अर्थ है भगवान की आदेशों के अनुसार चलना। धर्म उसी समय से प्रारंभ होता है जब कोई भगवान की शरण में जाता है। धर्म तभी प्रारंभ होता है जब कोई उनकी शरण में जाता है। आचार्य का यह कर्तव्य है कि वो प्रामाणिक धार्मिक प्रणाली चलाए और सबों को भगवान की समक्ष नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करें। धर्म का पालन करने के लिए भक्ति की जाती है, जिससे विशेषकर श्रवण कीर्तन स्मरण जैसे नौ विभाग हैं। दुर्भाग्यवश जब आचार्य नहीं रहता तो चोरों तथा अभक्त लाभ उठाकर तथाकथित स्वामियों जोगियों उपकारियों सामाजिक कार्यकलापों इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांत का प्रचलन कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन तो परमेश्वर की आज्ञाओं के पालन हेतु है। जैसा कि भगवद गीता 9:34 में कहा गया है, मन्मना भव मद भक्त मज्जा जी मां मनमास करो, माम एस्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरी विषय में सोचने में अपना मन लगाओ तथा मेरी भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। मुझ में पूर्णतः लिप्त रहकर तुम अवश्य ही मेरे पास आओगी। मानव समाज का मुख्य कार्य ईश्वर की विषय में सदैव चिंतन करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। उनका भक्त बनना, उनकी पूजा करना और उनके समक्ष नतमस्तक होना है। आचार्य जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है, इन सिद्धांतों की स्थापना करता है। किंतु जब उनका निर्धन हो जाता है तो ये सारे बातें पुनः अव्यवस्थित हो जाती हैं। आचार्य के असली शिष्य इस स्थिति से उबरने के लिए गुरु के आदेशों को निष्ठापूर्वक पालन करें। इस समय एक प्रकार से सारा संसार चोरों तथा अभक्तों से भयभीत हैं। अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार को अधार्मिक सिद्धांतों से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दें, जिससे संसार में वास्तविक शांति तथा सुख लाए जा सके। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तमिरांधस्य ज्ञानंजन सुलकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुत पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्यं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भूतेर्महद्वीयमा पुरो विभू निर्मायसे ते जदमो सपुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं स्वलङ्कृश्रेष्ठं भगवन् वचंसि। हरे कृष्ण। तो विदर्भ नरेश की स्त्री अपने मृत पति से इस प्रकार याचना कर रही हैं। एक पति के वियोग होने पर एक सती स्त्री की जैसे विरह की दशा होती है, उसी प्रकार अलौकिक रीति से नारद जी इस पुरंजन उपाख्यान के द्वारा समझा रहे हैं। कि किस प्रकार ये संसार की आसक्ति हैं और ये आसक्ति को कैसे काटना चाहिए, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त। तो जब हिमालय ध्वज का देहांत हो जाता है तो ये विदर्भ नरेश की जो कन्या हैं वो इस प्रकार संबोधित करते हुए कहती हैं, उतिष्ठ उतिष्ठ राजर्षे, हे राजर्षि आप उठिए उठिए। क्यों, क्या मेरे काम है, क्यों मैं उठूं? कहते आपके लिए कर्तव्य है क्योंकि आप राजा हैं। तो राजा की कर्तव्य है कि प्रजाओं को प्रोटेक्शन देना, प्रजाओं की पालन करना, प्रजाओं की रक्षा करना। तो इसलिए प्रजाओं को रक्षा करने के लिए अभी प्रजा बहुत कष्ट में है। किस प्रकार कष्ट में है? न दस्यु भी क्षत्र बंधु भी बिभ्यति। तो अभी पूरी जो संसार है ऐसे लुटेरों के द्वारा भरी हुई है, चोर उच्चक और लुटेरों के द्वारा भरी हुई है। और इस पृथ्वी लोग करे इमाम, इस पृथ्वी लोग मेघलाम उदधि घिरी हुई है। किससे? उदधि, समुद्र से घिरी हुई है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद एक विशेष बात पर बल देते हैं कि आचार्यों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि प्रजा शब्द है, केवल मनुष्य प्रजा नहीं होते हैं। राज्य में जो भी कुछ जन्म लेता है वो प्रजा है, वृक्ष लता पशु पक्षी सभी प्रजा हैं। तो प्रजाओं की पालन करना ये क्षत्रिय की बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन कलिजुग ज्यों ज्यों बढ़ती हैं हम देखते हैं कि संसार में तो राजा कैसे बदल गए हैं, दस्यु की तरह हो गए, दस्यु प्रायेषु राजनेषु। ये सब राजा कैसे बन गए हैं? दस्यु जैसे बन गए हैं, लुटेरे जैसे बन गए हैं, बहुत टैक्स लेते हैं, प्रजाओं को सताते हैं। दुर्भिक्ष कर पीड़िता, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कलिजुग का विशेष लक्षण क्या है कि अकाल पड़ेगा और लोगों की स्थिति ऐसे होगा कर पीड़िता, राजाओं की द्वारा व सरकार की द्वारा इतनी कर वसूल किया जाएगा तो लोग हैरान हो जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। दस्यु भी कर पीड़िता दुर्भिक्ष। तो इस परिस्थिति में ये एक आह्वान है कि आचार्य संसार को सुख शांति देने के लिए व संसार की समृद्धि के लिए, उसके उत्थान के लिए आचार्य की बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है। क्या? धर्म को स्थापन करना। धर्म के बिना किसकी पालन नहीं हो सकता है, इसलिए स्वयं भगवान कहते कि मैं आता हूँ। धर्म का मतलब क्या है? ना लोगों की स्वाभाविक स्थिति, स्वभाव को धर्म कहा जाता है। तो मनुष्य के अंदर जो दया शांति सौहार्दता विनयता अरे बहुत सारी सद्गुण हैं, इसको धर्म के 30 अंग कहा गया है। स्नेह ममता परस्पर आदान प्रदान। लेकिन ज्यों ही भगवान धराधाम को छोड़ देते हैं ये धर्म की 30 गुण जो है वो अपने आप नष्ट हो जाता है। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह पड़ो नष्ट दुर्साम। तो इसी प्रकार धर्म की दृष्टिकोण नष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। इस धर्म को स्थापन करने के लिए स्वयं भगवान समय समय पर आते हैं, झुके झुके। कभी कभी भगवान इस धर्म को स्थापन करने के लिए उनकी प्रामाणिक प्रतिनिधि आचार्यों को भेजते हैं और स्वयं भगवान कहते कि आचार्य मांग विजानियत न अवमन्यत कहचित। कभी अवमानना नहीं करना चाहिए, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए, वो मेरी ही प्रतिनिधि हैं और मेरी शक्ति से आविष्ट हैं। जैसे हम कहते हैं विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये सब आचार्य हैं, शंकराचार्य, इनके पास इतनी आध्यात्मिक शक्ति होती है, भक्ति की शक्ति होती है, वो संसार को परिवर्तन कर देते हैं। धर्म की रक्षा वास्तविक क्षत्रिय के हाथ में है, लेकिन क्षत्रियों की निर्देशक व मार्गदर्शक होते हैं राजा। इसलिए प्राचीन काल में जो मोनार्ची सिस्टम था तो उसमें हर राजा की एक कुल पुरोहित होते थे, कुल गुरु इसको कहते हैं, ये मार्गदर्शन करते हैं उनको। क्षत्रिय का मतलब है जो ये शरीर इस शरीर को रक्षा करे, त्रायते। लेकिन जब तक धर्म नहीं है तब तक कैसे त्राण होगा, परित्राणाय साधुनाम कैसे होगा, दुष्कृतियों को कौन नष्ट कर सकता है। धर्म एक आधार है, जिस धर्म को प्रचार करने से अपने आप अधार्मिक वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। तभी तक कोई धर्म के मार्ग में नहीं चल सकता है जब तक कोई पूर्ण तरह शरणागत नहीं होता है। तो तात्पर्य देखते हैं, धर्म की भावना तभी उत्पन्न होता है शरणागति, चाहे वो 10% हो, 20% हो, 50% हो, 80% हो, 90%। तो जो जितने मात्रा में शरणागत होता है तो उतना ही भगवान उनको प्रोटेक्शन देते हैं। जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। तो भगवान तो कहते हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको बचा लूंगा, प्रोटेक्शन दूंगा, डरो मत। परंतु तभी ये जो औषधि कार्य करता है वह भगवान की जो आश्वासना है वो तभी हम इसको अनुभव कर सकते हैं, तो जितना हम शरणागत होते हैं। और ये शरणागत का क्या सिम्टम्स हैं, लक्षण क्या है, भक्ति अनुकूल सदा कार्य रे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, दैन्य आत्मा निवेदना गोतृप्त वाराणे अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन। रूप गोस्वामीपाद इसके संस्कृत श्लोक में इसे कहते हैं, अनुकूल्यस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम कृष्ण रक्षेति विश्वास गोतृप्त वर्णम तथा आत्मा निक्षेप कार्पण्य सर्विधा। इस शरणागति की 6 सिम्टम्स है। पहले जो कृष्ण की भक्ति के लिए अनुकूल है, पहला अनुकूल क्या है, ये नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। लेकिन इस भक्ति को करते हुए ध्यान रखिए, बहुत सारी भक्त ये कह रहे हैं कि भक्ति की ये अंग है, लेकिन तभी इसको भक्ति की अंग माना जाता है जब वो ये कृष्ण व विष्णु की सेवा में अर्पित होता है, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति सेत नवलक्षणम, तब भी इसको भक्ति मानना चाहिए जब ये अर्पित होता है। काये न वाचा मनसा इंद्रिय वा नारायण इति समर्पय। तो ये है भक्ति योग की लक्षण, पहला है अनुकूल्य से। ये भावना रखना चाहिए, मुझे पायस इकट्ठा नहीं करना है, कलेक्ट नहीं करना है। सेवा मीन्स डेडिकेशन, हम जिसको प्रेम करते हैं उसके लिए हम सब कुछ उत्सर्गीकृत करते हैं। यहाँ से शुरू होता है फेवरेबल भक्ति व अनुकूल्य से, और प्रतिकूल से इसके विपरीत जो कुछ है इसको सब त्याग कर देना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर एक पद में गाते हैं ना, तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, क्या है उस लोग पद, क्या है पहला शुरुआत, क्या है कौन सा षडंग सरना, अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार है, उसके बाद दैन्या आत्मा निवेदना वृत्त वर्णे अवश्य रखी हुए कृष्ण विश्वास एंड। भक्ति जीवन के प्रारंभ में हमारे बहुत इकोस्टिक मेंटालिटी रहता है ना, क्योंकि इससे ही हम जन्म लिए हैं और इसके द्वारा ही हमारे पालन पोषण होता है, शरीर की हमारी चेतना की भावना की। तो भक्ति जीवन जब शुरू करते हैं, ये इगोस्टिक मेंटालिटी के विरुद्ध में एक प्रकार की क्या कर सकते हैं, संग्राम, रिवोल्यूशन, विप्लव शुरू होता है। हम कैसे दूसरे को संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें, इगोस्टिक मेंटालिटी में हमेशा ये होता है कि मुझे मान मिले, मुझे सुख मिले, अहम की प्रतिष्ठा। परंतु यहाँ अहम को नष्ट करने का नहीं है, अहम को सेवा में लगाने से वो प्योर ईगो होता है, और ये है गुरु और कृष्ण की अदैन्यता। आने पर जो फेवरेबल है इसको हम डिटरमाइंड होकर के सब करते हैं, अदैन्यता नहीं है वो कुकुटन आए हैं, जो हमको अच्छा लगता है वही करेंगे। सुनो सबकी तरह अपने मन की, इस बात पर चलते, इस रास्ता पर चलते। महाजन जैन गतस्य पंथा, उस धर्म के मार्ग को स्वीकार नहीं करते, धर्म यही है ना, धर्मस्य तत्व निहित गुहायम महाजन येन गतस्य पंथा। तो महाजन के द्वारा बनी हुई रास्ता पर चलने के लिए तभी हमारी वृत्ति व स्वभाव उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होती है, और जब तक नहीं है तब अलग अलग डॉक्ट्रिन है, फिलोसफी है, मतन्न भिन्न मुनि, इस अलग अलग हम सब दर्शन देते हैं। हाँ ये भी है, ये बात है। तो जो जितना शरणागत होता है, जो जितना अंदर से दैन्यता को उत्पन्न करता है, वो धर्म की सूक्ष्मता को उतने अधिक मात्रा से समझ पाएगा, और जो जितना ही अधिक मात्रा से धर्म की सूक्ष्मता को समझता है तो वो उतना ही शरणागत हो सकता है। सर्विस से, सेवा करने से सिंपलिसिटी उत्पन्न होता है। और सिंपलिसिटी उत्पन्न होने पर क्या होता है, व्यक्ति सरेंडर होता है, और जितना सरेंडर होता है तो उतना ही भगवान के शेल्टर प्राप्त होता है। सर्विस, सिंपलिसिटी, सरेंडर एंड शेल्टर क्रम से आता है, क्रम से। आप देखिए अपने आप, हम जब सेवा शुरू करते हैं, पहला जप करते हैं, भगवान के नाम की कीर्तन करते हैं, तो सेवा से धीरे धीरे हमारे अंदर जो सरलता आती है, सम्मान करने के। और यदि हम ठीक से नाम जप नहीं करते हैं, अनर्थ युक्त नाम जप करते हैं, अपराध युक्त, तो हमारे ईगो बढ़ता है, दूसरे के गुण ना देख करके उसकी कमियां देखते हैं, दूसरे को सम्मान ना देख करके सम्मान के एस्पेक्ट करते हैं उनसे, तो ये सब प्रतिकूल भाव है। भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनादि का, तो आत्मनिवेदन के साथ, दैन्य और आत्मनिवेदन के साथ इस वो फेवरेबल गुण को एक्सेप्ट करना चाहिए, भक्ति के जो अनुकूल गुण, तभी फिर हम जो भक्ति के जो सीक्रेट है, धर्म के जो सीक्रेट है, प्रभुपाद कहते हैं क्या है, मनमना भव मत भक्त। आप देखिए जो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा है ये दी है ना कि अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा है, दूसरे को मान दे करके और अपने मान की इच्छा न करते हुए कीर्तन करना चाहिए। और वो बाह्य लोक व्यवहार अंतर निष्ठा है ना, तो अंतर अंदर से भगवान की प्रति एकाग्रता व चिंतन, तभी हम कर पाएंगे। श्रवण कीर्तन के बाद जो स्मरण है अंग को, हम तभी पालन कर पाएंगे जब इस प्रकार व्यवहारिक होना चाहिए। जो भक्ति जीवन है वो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस धर्म को स्थापन करने के लिए आए। अनर्पितम चरिम चिरात करुणया तो है ही, लेकिन विशेष जो है सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु किसको देने के लिए आए हैं, काल नष्टम भक्तिम जोगम निजम, जो समय के अनुसार नष्ट हो जाता है, जब डेमोनिक मेंटालिटी बढ़ता है, इगोस्टिक मेंटालिटी बढ़ता है, ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धा अहम बलवान सुखी, तो ये जो मेंटालिटी है ये धर्म को नष्ट कर देता है। सकाल ने हमता जोग नष्ट परंतप, भगवान इस उपदेश देने की पहले, इस ज्ञान की उपदेश देने की पहले अर्जुन को कहते हैं कि काल के अनुसार ये धर्म भी नष्ट हो चुका था। देखिए काल कितनी पावरफुल है, ये समय समय पर इस प्रकार अभिवृत्ति होती है, जो डेमोनिक क्वालिटीज है वा मेंटालिटी है वो समय के अनुसार संघ के अनुसार उत्पन्न होती है। आप वृंदावन में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम को नीता के दर्शन करते हैं, मंगलारती अटेंड करते हैं, आपकी मनोभावना देखिए परखिए, और आप कुछ समय के लिए दिल्ली चल जाइए वा बॉम्बे शहर चल जाइए, आप खुद देखिए स्थान समय कितने हमको प्रभावित करता है। तो ये जो भक्ति जोग है ये समय इसको भी नष्ट कर देता है, तुरंत स्वभाव बदल जाता है कि छोटे से बात पर। एक भक्त ने बाद में तो रिफेंड किया, फावड़ा उठाया अपने साला को पीट दिया, मर्डर। जब जेल गया तो रिफेंड किया, क्या हो गया, और वाइस प्रेसिडेंट था एक मंदिर का, अब सोचिए कि हमारी अंदर ये जो स्वभाव है हम परख नहीं पाते हैं किस प्रकार है। जैसे अपने चेहरा को देखने के लिए एक मिरर की आवश्यकता होती है, शीशा की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार अपने गुण को बा स्वभाव को परखने के लिए इस प्रकार एक शास्त्र रूपी मिरर की मापदंड रखना चाहिए, किस प्रकार हमारी स्वभाव है, क्या ये अनुकूल है भक्ति। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, काळं नष्टं भक्तिं जोगं निजं जप्रादुष्कृतं श्रीकृष्ण चैतन्य नामं। आविर्भूतं तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लीयतं चित्तभंगा। एक मधुमक्खी बनकर के चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षा को चैतन्य महाप्रभु प्रचार भी किए और आचार भी किए। तो आचरित और प्रचारित धर्म का बहुत प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग प्रचार करते हैं लेकिन आचार नहीं है, कुछ लोग आचार करते हैं भजनानंद भी हो जाते हैं तो प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। तो ये भी संसार में एक व्यवधान उत्पन्न करता है, धर्म के एक व्यवधान उत्पन्न करता है। किसी का काला नहीं सकाल ने हम हता जोग नष्ट परंत, ये जोग नष्ट हो जाता है कांति द्वारा। इसलिए मोमेंट मूड इस भक्ति जोग का मूड क्या है, प्रभुपाद हर स्थान पर प्रभुपाद की परपट इसलिए एक रिवोल्यूशन है, क्रांति उत्पन्न करता है। हर परपट में क्या लिखते हैं प्रभुपाद, हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को ऐसा ही सहयोग देना चाहिए, इसके उद्देश्य को समझना चाहिए। और यदि हम इसकी एम एम्बिशन गोल को नहीं समझते हैं तो हमारे कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। एक भक्त इसे वासुघोष प्रभु बता रहे थे, एक भक्त बॉम्बे में जैन किया, बहुत पुराने भक्त हैं अभी भी हैं मूवमेंट पे, लेकिन पहले जब आया तो बॉम्बे मंदिर देखकर कि कहा अरे क्या है ये माल, मतलब कितनी धन है, ये लोग कितनी थाट बाट में रहते हैं, चलो हम भी घुस जाए इसमें। तो प्रभुपाद आठवां स्कंद भागवत में जब समुद्र मंथन है तो उसमें प्रभुपाद परपट में लिखते हैं कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में ऐसे अनेक भक्त हैं, छद्म वेशधारी भक्त हैं जो अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए, जैसे राहु और केतु असुर थे लेकिन वेश बदल करके अमृत पीने के लिए बैठ गए थे। एक रिवोल्यूशन है, प्रभुपाद एम्फसाइज देते हैं कि ऐसे अनेक भक्त हैं और फिर अपने उद्देश्य पूर्ति होने के बाद फिर अपने स्थान में चल जाते हैं। लेकिन कृष्ण भवन आंदोलन सूर्य और चंद्रमा की तरह है, वो उनकी मुख खोल देता है और टिक नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य के कर्तव्य हैं कि साधारण भक्तों को जज्जत आचार्य तीन श्रेष्ठम, आचार्य यही है ना, श्रेष्ठ आचरण जो है वो आचार्य। तत्त देवे तरो जना, सामान्य जन को ये धर्म की उपदेश व मार्ग प्रदर्शन करे जैसे आचरण करना चाहिए। आचार्य परफेक्ट है, उनके आचरण में कभी कमी नहीं है। भगवान भी स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आचार्य का कमी नहीं देखना चाहिए, इज परफेक्ट। कमी तो हम सबका देख सकते हैं, भगवान पूर्ण होने पर भी, पूर्णा पूर्णतर पूर्णतम होने पर भी उनकी कमियां दुर्योधन ने देखा, अरे ग्वाला हूं, शिशुपाल भी गाली दिया, कंस ने भी कमी देखा, चरास ने भी कमी देखा, मामा का हथियार, कमी तो हम सबके निकाल सकते हैं। लेकिन सावधान रहिए, जो आचार्य बार जो प्रामाणिक भक्त हैं उनकी प्रति यदि रंच मात्र भी शंका व संशय व प्रतिकूल भावना उत्पन्न हो गया, उसी समय से आपकी भक्ति लाइन कट हो गया, जोग से आप विच्युत हो गए और यही पतन की रास्ता। इसलिए रूप गोस्वामी पाद बहुत सावधानी पूर्वक कहते हैं जो भजन करता है इसको क्या करना चाहिए, पहले प्रणाम करना चाहिए, दीक्षास्ति चेत प्रणत भिस्स, और जो निंदा आदि शून्य उत्तम भक्त हैं हृदय इप्सित संगलप्पा कृष्णेति जत गिरितम मनसा आद्रियत आदर देना चाहिए। इसमें निंदा व उसकी त्रुटियां देखने कोई सवाल नहीं होता। इसलिए ये विदर भी कह रही है, राजर्षि ये संबोधन कर रहे हैं कि राजा भी होना चाहिए और ऋषि भी होना चाहिए। ऋषया जनकादया, वो भगवद गीता कौन से श्लोक है, कर्मणैव हि संसिद्धि अस्तिता जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तृमर्हसि। फिर भगवान कह रहे जज्जत आचरति श्रेष्ठ, तो कर्म के द्वारा कैसे सिद्धि प्राप्त करना है, कर्मणैव संसिद्धि अस्तिता जनकादय, जनकादि राजर्षि ने इस मार्ग प्रदर्शन किए। तो इसलिए जो क्षेत्र बंधुभ्य, कभी कभी राजा ऐसे होते हैं, बैंड जैसे राजा होते हैं, वो लुटेरी है, क्षेत्र बंधु है, ब्राह्मण होने पर भी ब्राह्मण के गुण नहीं है, क्षत्रिय होने पर भी क्षत्रिय के गुण नहीं है, द्विज बंधु और क्षेत्र बंधु कहा जाता है। तो ऐसे लोग भी कभी बलपूर्वक हिरण्यकशिपु रावण जैसे वो भी राजगद्दी पर बैठ जाते हैं, लेकिन प्रजाओं को धर्म के अनुसार पालन नहीं करते हैं, फिर धर्म की व्यवधान आ जाता है। इसलिए आचार्य की बहुत आवश्यकता है, जो यह धर्म की नीति सिखाए, मनमना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, ये चार जो है ये धर्म के नियम है, यही चार चीज करना चाहिए, यही धर्म है। यही नहीं करते हैं, कभी कभी मनमना की बदले कहते हैं जो सोचते हैं वही करो, मनमना करो, मत मना नहीं है, मनमना करो, जो आपका मन कहता है वही धर्म है, जो चाहते हैं वही करो। वो फिर इसी प्रकार शास्त्र की व्याख्या करते हैं, लोग को दुख भ्रमित करते हैं, मनमना करो, भगवान कह रहे ना मनमना। भगवान कह रहे ना मांग नमस्कुरु, वो कह रहे मांग नमस्कुरु, मुझसे प्रणाम करो, दक्षिणा वगैरह मुझे दे दो, सब तुम्हारा काम हो जाएगा, करना हो जाएगा। बोला प्रभुपाद कहते विदेश में ऐसे अनेक गुरु हैं जो कहते हैं कि हमको कुछ मोटे अंक में कुछ डोनेशन दो और फिर हमसे कुछ गुप्त मंत्र ले लो, तुम्हारी सिद्धि हो जाए। इसलिए भगवद गीता यथारूप, प्रभुपाद लिखने के पहले आमुख में लिखते हैं, इसलिए इस भगवद गीता यथारूप की आवश्यकता है, एक प्रामाणिक है और प्रामाणिक प्रतिनिधि इसको रिप्रेजेंट करके इस भाव को, भगवान के भाव को यथारूप जो आचार्य परंपरा से आ रही है उसको प्रस्तुत किए, एवं परंपरा प्राप्त। तो जब भी आचार्य नहीं होते हैं तो तथाकथित जो योगी हैं, हाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि तथाकथित स्वामियों योगियों उपकारियों सामाजिक कार्यकर्ताओं इत्यादि के रूप में अवैध सिद्धांत का प्रचलन करते हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये भक्ति के सिद्धांत नहीं है। इसलिए जब आचार्य आते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या है, अप सिद्धांत भ्रांत हरि, अप सिद्धांत को हटाने के लिए आए। जब जब आचार्य चल जाते हैं तब धर्म की ग्लानी होती है। हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज 96 में मायापुर में एक सेमिनार दिए थे, व्हाट हैपेन व्हेन आचार्य डिपार्चर। तो पूरा परंपरा से लिए थे, मुझे याद है मैं सुन रहा था वो लेक्चर गोवर्धन में। तो चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद कैसे हुआ धर्म की स्थिति, फिर सड़गोसा में आए, फिर इस धर्म को रिवोल्यूट किए, रिनोवेट किए, फिर सड़गोसा में जाने के बाद कैसे अपसंप्रदाय बन गए थे 13 अपर संप्रदाय, उसको भक्ति विनोद ठाकुर कैसे सुधार किए। तो उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद उसको क्रम से लिए हैं भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जाने के बाद उनके शिष्यों ने किस प्रकार की धर्म के सिद्धांत को यथारूप पालन नहीं किए, स्कैटर्ड हो गए, और प्रभुपाद ने कैसे पुनर्वार इसको एस्टैब्लिश करके ना वर्ल्ड वाइड प्रचार किया। और प्रभुपाद जाने के बाद अभी क्या क्राइसिस है सोसाइटी में, तो इसको कैसे अभी हम देख सकते हैं कि आचार्य जाने के बाद कैसे ग्लानी होती है, और इसलिए प्रभुपाद ने ये परपट में लिखते हैं कि अतः यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के आध्यात्मिक सिद्धांत से बचाने के लिए चलाया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस आंदोलन में सहयोग दें। आचार्य के असली शिष्य इसी स्थिति से उबरने के लिए गुरु के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। तो यदि शिष्य सीरियस नहीं है और निष्ठापूर्वक धर्म की सिद्धांत को पालन नहीं करता है तो निश्चित हम डाइवर्ट हो जाएंगे। ये जो आचार्यों के द्वारा बनी हुई जो मार्ग है वो स्ट्रेट मार्ग पर हम नहीं चल सकते, हम निश्चित रूप से डाइवर्ट होकर दूसरे मार्ग में चल जाएंगे। इसलिए बहुत कसस होना चाहिए भक्तों को। और जैसे प्रभुपाद ने सिद्धांत दिए हैं, कभी कभी हम रस तत्व को सुनने के लिए सोसाइटी छोड़ के चल जाते हैं। हम अरे क्या है सब ड्राई सब मिलता है, कुछ ऐसा है नहीं, वही चीज़ को चर्चा करते हैं। हम तो रसिक होना चाहिए, मोहर हो रसी का भूमि भाव का। और कितना हृदय में कौन सा रस पड़ा है उसको नापने के लिए कुछ है नहीं, काम रस पड़ा है कि प्रेम रस पड़ा है। तो इसलिए आचार्यों के मार्गों को अनुसरण करना चाहिए, नया पथ नहीं बनाना चाहिए। सच में बहुत फॉर्चुनेट समझना चाहिए हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों को, क्योंकि ऐसे जो शब्द हैं सब लोग तो कहते हैं ठीक है आपका स्वास्थ्य, लेकिन जो असली डॉक्टर हैं आपका रोग देख सकता है। हालांकि कभी कभी वो कड़वा दवाई भी देता है, लेकिन लोग पसंद नहीं करते हैं, ये डॉक्टर ठीक नहीं है, ये क्या देगा दवाई, क्योंकि हम पहले तो समझते नहीं है कि हमारी जी। इसलिए भवर रोगी हैं हम, और संसार में कैसे पड़े हैं, कुछ प्रार्थना भी दयनीयता आती भी नहीं है हृदय में, तो सेवन करने की कैसे इच्छा हो। इसलिए भवो सदी श्रुत्वा मनोविरामम, इस कथा को जब आप सुनते रहेंगे ना ये औषधि की तरह काम करेगा। इसको मनन करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी स्थिति को देखना चाहिए, तब फिर प्रतिपाल। हरे कृष्णा। इसकी कोई प्रश्न है? अर्जुन ने जब कहा गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयं भोक्तुं भोक्ष्यंगपीह लोके हत्वार्थ कामान्न गुरुर्न एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिज्ञा। तो चक्रवर्ती पाद इस टीका में लिखते हैं प्रभु जी वृंदावन चंद्र तो आप ये हैं जो संधि विच्छेद हैं, गुरु न अवत्वा हिमा, हिम का मतलब है बर्फ, जैसे अग्नि के ऊपर हम बर्फ रखते हैं वो अग्नि बुझा देता है, अग्नि को बुझा देता है बर्फ। तो गुरु गुरु न ही, ही शब्द को इसके साथ लिए हिमा, कहते महत्पुरुष है, कहते नहीं ये हिम के समान है। अर्जुन के अंदर ये भावना कम नहीं था, वो तो अर्जुन ही गुरु मानता था ना, तो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति। परंतु वो जो स्थिति था उस समय अधर्म की पक्ष लेने के कारण भगवान कह रहे हैं कि आप तस्मात उत्तिष्ठा युद्धाय कृत निश्चय, आप युद्ध करो, और तुम ये मत सोचो कि मैं द्रोणाचार्य को मार रहा हूँ, ये अपने अधर्म की वजह से मैं उनको मार चुका हूँ। 11वां अध्याय में क्या बताए, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा अन्य युद्ध वीरान मया हतस्त्वं जहिमां वितिष्ठा युद्धस्य वेदासि रमेश। भगवान कहे कि ये मेरे द्वारा पहले मारा जा चुके, तुम निमित्त मात्र बनो। निमित्त मात्र बनने का मतलब क्या है, तो मर गए हैं तो मरे हुए के ऊपर केवल बाण चलाना है, इसे मूर्ति बना दिया गया है, ड्रेस रखा हुआ है, तुम सिर्फ पहना दो निमित्त बनो, तो इसलिए पाप नहीं लगेगा। यदि कोई प्रामाणिक प्रतिनिधि के आदेश के अनुसार कार्य करता है, गर्हित कार्य होने पर भी जस्य नाहं कृतो भाव और बुद्धिर्जस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोका नाहंति न निबध्यते, ब्रह्मण्य दहाय कर्माणि संगं कृत्वा करोति जो लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र नवामसा। भगवान जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कमल की पत्तियों की तरह है ना, पानी में रहने पर भी कोई प्रभावित नहीं होता, यदि ब्रह्मण्य अध्याय कर्माणि, यदि भगवान व भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि की आदेश के अनुसार कोई कार्य करता है उसको पाप छू नहीं सकता है, और यही करना चाहिए, जैसे जमदाग्नि के आदेश पर परशुराम ने किया, उलगा नहीं। इसलिए जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है गुरु है ना, गुरु रिप्रेजेंटेटिव है, अगर यदि उनकी आदेश के अनुसार कोई कार्य करता है उसको पाप नहीं लगता है। जैसे कोई कहता है कि कमांडर की आदेश पर कोई गोली चलाता है तो सिपाही को दोष नहीं लगता है कि इतने सैनिकों को मार दिया है उसको फांसी चढ़ा, और वही व्यक्ति यदि अपने मन के अनुसार आकर किसी को व्यक्ति को मारता है तो उसको तुरंत सजा मिलता है, फांसी चढ़ा सकते हैं सरकार। तो ये है कि शिष्य गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए, और प्रभुपाद दो चीज़ लेके हैं ना, कि जब तक गुरु जीवित हैं तब उनकी फिजिकली एसोसिएशन लेना चाहिए, हाँ, और जब गुरु के डिपार्चर हो जाता है तो फिर उनकी वाणी को पालन करना चाहिए, तो दोनों ही सुरक्षित हैं है ना, बप्पू और वाणी की सुरक्षा। तो शोक तो होना ही चाहिए, शोक होना ही चाहिए कि गुरु जब चल जाते हैं, लेकिन एक तरह से गुरु के साथ हमारे और निष्ठा बढ़ती है, गुरु के साथ और निष्ठा बढ़ती है, यदि हम वाणी के प्रति दृढ़ रहते हैं तो गुरु शिष्य से अलग नहीं होता है। तो उसी प्रकार यदि सती स्त्री अपने पति की आदेश के अनुसार कार्य करते पूरी तरह से तो फिर ही पति लोग को प्राप्त करती है। इसलिए स्त्री जो सती स्त्री है वो पति की विरह को सहन नहीं कर पाती है, उसको आग में प्रवेश करने का ये नहीं रहता है, वो तो अपने आप ही उसकी विरह ही उसको जला देती है। हम लोग सुने थे ना एक कथा, जयदेव गोस्वामी वो कह रहे इतना, उनकी पत्नी कहते हैं जो पतिव्रता स्त्री है सती स्त्री है उस आग में प्रवेश करना उसका आवश्यक नहीं रहता है, पति की विरह को सुनते ही उसका शरीर चल जाता है, और ऐसे ही हुआ पद्मावती। तो विरह है और यूनियन भी है। प्रभुपाद कहते हैं कि शिष्य जब गुरु डिपार्चर हो जाते हैं तो और इंटीमेसी बढ़ जाता है, कि गुरु की इस प्रकार करुणा को स्मरण करते हुए सेवा करता है, और इंटीमेसी बढ़ जाती है। इसलिए हाँ विप्रलम्ब सेवा जो है हाँ वो बहुत हायर है, और ये सेवा को हाँ गुरु जब चल जाते हैं तो शिष्य जो सीरियस शिष्य हैं उस प्रकार करते हैं और बढ़ जाता है विरह फिर आप ही हाँ जो सड़क गोसाई बात नहीं दिखे। इसलिए प्रभुपाद जाने के बाद भी प्रभुपाद का केवल शिष्य नहीं उनके प्रशिष्य भी हाँ प्रभुपाद की लीला को सुनकर के जो विरह उत्पन्न करते वो और ज़्यादा हाँ इंटीग्रेस एक प्रकार की दुख होना चाहिए और एक प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। प्रभु जी का कुछ कमेंट है गंदान से होते दो शब्द बोली धन्यवाद वृंदांचन ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हिताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।